नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4000 से अधिक कोविड अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करेंगे। देश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले एक समारोह में बच्चों को स्कूल छात्रवृत्ति, सरकार के स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ साथ 23 साल की उम्र तक सभी लाभार्थियों को दिए गए 10 लाख रुपए की पासबुक मिलेगी। अब तक पहचाने गए लाभार्थियों की कुल संख्या 4345 है। पिछले साल 29 मई को कोविड अनाथों के लिए योजना की घोषणा के बाद से एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये योजना उन बच्चों का समर्थन करने के लिए है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या अकेले जीवित माता पिता दोनों को कोविड महामारी से खो दिया है। उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी के बाद भाजपा की राज्य कार्यकारिणी समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के रोड मैप को चार्ट करने के लिए रविवार को लखनऊ में पहली बार बैठक की। एक दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं से 2024 के आम चुनावों में राज्य की सभी 75 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने में भाजपा की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने राम मंदिर का भी आह्वान किया और कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद काशी और राज्य के अन्य धार्मिक स्थल जाग रहे हैं। आदित्यनाथ की टिप्पणी मथुरा और वाराणसी में मंदिर मस्जिद विवादों पर कानूनी कार्रवाई के बीच आई, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि अन्य राज्यों के विपरीत रामनवमी और हनुमान जयंती उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक आयोजित की गई थी और पहली बार रमजान के दौरान सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं की गई थी। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के अपने सरकार के फैसले के बारे में बात करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, अतीत में MICS दंगों, अराजकता और दो पक्षों के बीच तनाव का कारण था। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में उनके योगदान और कड़ी मेहनत के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार लोगों की मदद करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पार्टी का पूरा सहयोग करेगी। सोमवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में ज्ञानवापी सुनवाई शुरू होने पर सभी की निगाहें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की टीम पर होगी, क्योंकि वे केस नंबर 693/2021 राखी सिंह बनाम यूपी सरकार और अन्य की सुनवाई को चुनौती देते हुए अपनी दलीलें जारी रखेंगे। 5 महिलावादी ने ज्ञानवापी मस्जिद में देवी श्रृंगार, गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में मामले को बनाए रखने के मुद्दे पर जिला न्यायाधीश ने 26 मई को सुनवाई शुरू की थी। AIM अधिवक्ताओं द्वारा ये उल्लेख करने की संभावना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को SC के अन्य कानूनों और आदेशों के अलावा पूजा स्थलों के संरक्षण अधिनियम 1991 के तहत कैसे कवर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि गुजरात में पिछली सभी कांग्रेस सरकारें कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में विफल रही हैं। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में जो लोग भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर हमला करते थे, अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है और वो वहाँ पर जगन्नाथ जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे हैं। खेड़ा जिले के नदिया में 25 जिलों में पुलिस के लिए बनाए गए 57 हाउसिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्सों का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा, मैं गुजरात से हूं और मैंने राज्य में भाजपा सरकार और मोदी जी के CM बनने से पहले के गुजरात को भी देखा है। आज मैं यहां पिछली सभी कांग्रेस सरकारों ने जो गलत किया उसके बारे में बात नहीं करने आया हूँ। कांग्रेस सरकारों ने समाज के भीतर अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक घटनाओं को फैलाने का काम किया था, जिसके कारण राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। इसका क्या परिणाम हुआ? गुजरात में एक साल में 200 दिन कर्फ्यू रहने लगा। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर बाहर निकलता था तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती थी कि वो वापस लौटेगा या नहीं। कई दिनों तक बैंक, फैक्ट्रियां और व्यापार बंद रहता था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचता था। अगर कोई रथ यात्रा निकालने वाली तो उस समय ये समझा जाता था कि सांप्रदायिक हिंसा होने वाली है। योग और आयुर्वेद के लिए मशहूर पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने रविवार को अपने उत्तराधिकारी का खुलासा किया, ये दावा करते हुए कि उन्हें पिछले 10 वर्षों में बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर आचार्य श्री से कि कौन नाम आगे आएगा। बाबा रामदेव ने कहा कि दिव्य ट्रस्ट की अध्यक्षता अब पूज्य साध्वी ब्रह्मवादिनी करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके निधन के 50-60 साल बाद भी दिव्य ट्रस्ट का संचालन साध्वी बहनों द्वारा किया जाएगा। उस पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की तरह जो हर तरफ मशहूर है, वहां हमने कभी भी धर्म, जाति, रंग या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया। जब हमने इसे शुरू किया था तब ही हमने सोचा था कि हम इन पर कभी भेदभाव नहीं होने देंगे। इस साल जून में एक निवेश करने की घोषणा करने से पहले बाबा रामदेव ने कहा, दिव्य पुंज ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि संन्यास आश्रम के भाइयों और बहनों के लिए ट्रस्ट, इतिहास में ये पहली बार है कि पतंजलि जैसी संस्था स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने जा रही है। उन्होंने कहा, विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।